नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने आज भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में भाग लेंगे। संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 4वें दिन स्थगित। सरकार ने लोकसभा में कहा, भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से संबंधित स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संभल के शाही जामा मस्जिद समिति को मस्जिद सर्वेक्षण मामले में उच्च न्यायालय जाने को कहा। सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ याचिका सूचीबद्ध होने तक स्थानीय अदालत को कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में आज पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरे, कृत्रिम मेधा और ड्रोन हमले जैसी उभरती चुनौतियों पर विमर्श होगा। आतंकवाद से निपटने पर भी चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए जाएंगे। ये सम्मेलन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत धोबाल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अनुसंधान और विश्लेषण स्कंड रॉ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सतर्कता ब्यूरो और एसपीजी के प्रमुख सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल और परसों सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस ने भुवनेश्वर में कम से कम 5 स्थानों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। संसद के दोनों सदनों में आज शीतकालीन सत्र के लगातार 4वें दिन भी व्यवधान जारी रहा। एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वत के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के कारण राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में दोपहर 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलने देने के लिए अध्यक्ष ओम बिरला की अपील के बावजूद हंगामा जारी रहा। उन्होंने व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता चाहती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में जब आज सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तब सभापति जगदीप धनखड़ ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग करने वाले विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कार्यवाही के दौरान लगातार व्यवधान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभापति ने कहा कि विरोध करने वाले सदस्यों ने बहुत खराब परंपरा कायम की है और सदन लोगों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। उन्होंने कहा कि लोग सदस्यों के इस व्यवहार पर दुखी हैं और उनका कहना है कि ये सार्वजनिक हित में नहीं है। सदन में शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की खबरों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने आज लोकसभा में बताया कि बांग्लादेश में इस वर्ष अगस्त में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया था तथा मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों पर हमले हुए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हुए हमले और सतखेरा के जोशेश्वरी काली मंदिर में हुई चोरी पर सरकार ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। श्री जयशंकर ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। सर्वोच्च न्यायालय ने संभल के स्थानीय अदालत से कहा है कि वो चंदौसी में शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई तब तक ना करे जब तक कि सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो जाती। सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद समिति को इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को कहा है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखा जाए और इसे बीच में न खोला जाए। न्यायालय मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 19 नवंबर को पारित स्थानीय न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। स्थानीय न्यायालय ने एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा सहित अन्य मुद्दों पर संसद में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए आज विपक्ष पर सवाल उठाए। संसद के बाहर उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण दल अदालत के आदेश पर मस्जिद पहुंचा, लेकिन शरारती तत्वों ने उस पर और पुलिस पर हमला किया। श्री बघेल ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने संभल हिंसा घटना की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संसद में इस मुद्दे को उठाना चाहती है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ की जिला पुलिस ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर से सक्रिय 7 फरार आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क कर ली है। इससे पहले पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर से सक्रिय किश्तवाड़ के 36 आतंकवादियों को डोडा जिले की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने फरार घोषित किया था। कुर्क की गई संपत्तियों पर विशेष पट्टिका लगाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि शेष 29 आतंकवादियों की संपत्ति की भी जांच पहचान कर ली गई है, उसकी भी कुर्की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में अनेक लोगों के जीवन में समृद्धि लाने की क्षमता है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार भारत के पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक पोस्ट में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को विकसित करने के लिए 40 परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्द ही स्नातक छात्रों के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि कम करने या उसे बढ़ाने का विकल्प प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने त्वरित और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मीडिया को बताया कि त्वरित डिग्री कार्यक्रम से छात्रों को प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करके कम समय में 3 साल या 4 साल की डिग्री हासिल कर सकेंगे। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका की नौसेना के सहयोग से आज अरब सागर में मछली पकड़ने वाली 2 नौकाओं से लगभग 500 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है। नौसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उसने श्रीलंका की नौसेना के सहयोग से मादक पदार्थ ले जा रही नौकाओं का पता लगाया और उसे कब्जे में ले लिया। दोनों नौकाओं, उसके नाविकों और जब्त किए गए मादक पदार्थों को आगे की कार्रवाई के लिए श्रीलंका के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की एक खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र आज सुबह पुदुचेरी के 360 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 400 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। मौसम विभाग के अनुसार इसके अगले 3 घंटों में चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। इसके उत्तर की ओर बढ़ने और कल दोपहर बाद पुदुचेरी के पास महाबलीपुरम और कराईकल के बीच समुद्र तट को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। सरकार ने देश में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 23 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं के लिए राज्यों को विशेष सहायता दी जाएगी, जिस पर 50 वर्ष तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। परियोजना में पर्यटन स्थलों पर भीड़भाड़ नियंत्रित करना, पर्यटन स्थलों को उन्नत तकनीकों से लैस करना तथा आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लखनऊ में पीवी सिंधु सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। उन्होंने चीन की दाई वांग को 21-15, 21-17 से हराया। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला एक अन्य भारतीय खिलाड़ी मीराबा लुआंग मैसनाम से होगा। मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी लू बिंग कुन और हो लो ई को हराया। दूसरी ओर सतीश कुमार और आद्य वर्यात की भारतीय जोड़ी थाईलैंड की पुवारानुक्रो देजापोल और सुबिसारा पेवसामप्रान से हार गई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।